अध्याय 21 चंदेल वंश की उत्पत्ति। इस वंश का उदय प्रतिहार वंश के पतन के पश्चात हुआ। इस वंश की उत्पत्ति के विषय में अनेक जनश्रुतियां प्रचलित हैं। पहला, स्मित रसेल आदि कुछ विद्वानों का मत है कि यह वंश अनार्य जातियों गौंडों और भरों से उत्पन्न हुआ था, परंतु यह मत विश्वसनीय नहीं है। दूसरा, अभिलेखों में चंदेल वंश को ऋषि चंद्रात्रेय की संतान माना है। तीसरा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार यह वंश एक ब्राह्मण कन्या और चंद्रमा से उत्पन्न हुआ था। मूल निवास स्थान, इस वंश के प्रमुख अभिलेख कालंजर, खजुराहो, महोबा और अजयगढ़ में प्राप्त हुए हैं। इनसे प्रकट होता है कि इस वंश का उदय वर्तमान बुंदेलखंड में हुआ था। इस वंश के एक राजा जय शक्ति जे अथवा जेजक नाम पर बुंदेलखंड को जयजाक भुक्ति कहते थे। प्रारंभिक राजा, चंदेल वंश के प्रारंभिक राजा प्रतिहारों के अधीन सामंत रूप में शासन करते थे। ये राजा थे नन्नूक, वाक्पति, जय शक्ति, वी शक्ति, राहिल और हर्ष। यशोवर्मन 1925 से 1950, हर्ष की मृत्यु के पश्चात यशोवर्मन सिंहासन पर बैठा। इसने 1925 से 1950 तक राज्य किया। सर्वप्रथम इसी राजा के समय यह वंश पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बना। इसके पुत्र धंग के खजुराहो अभिलेख से इस राजा के विषय में अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। पहला, यशोवर्मन गुर्जरों के लिए अग्नि के समान था। दूसरा, इसने कालंजर विजय की, संभवतः इसके पूर्व कालंजर राष्ट्रकूटों के अधीन था, अतः यशोवर्मन ने राष्ट्रकूटों को पराजित किया होगा। तीसरा, इसने प्रतिहार नरे देवपाल से बैकुंठ की मूर्ति प्राप्त की। संभव है कि इसने यह मूर्ति प्रतिहार नरे से बलपूर्वक ग्रहण की हो। यदि ऐसा है तो फिर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस समय चंदेल वंश नाम मात्र को ही प्रतिहार वंश को अपना स्वामी मानता था। चौथा, यशोवर्मन ने चेदी नरेश को परास्त किया। संभवतः यह चेदी नरेश युवराज प्रथम था। पांचवा, इसने पाल वंश को पराजित किया। यह पाल नरेश गोपाल द्वितीय था। संभवतः यशोवर्मन ने गौड और मिथिला के प्रदेश छीन लिए थे। छठवां, इस अभिलेख के कथनानुसार यशोवर्मन ने खशो को पराजित किया था। कश्मीर के एक भाग में खशो का राज्य था, परंतु यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता कि यशोवर्मन ने बुंदेलखंड से इतनी दूर कश्मीर में युद्ध किया हो। सातवां, अभिलेख का वर्णन है कि यशोवर्मन ने कौशलों का कोष छीन लिया। उत्तर कौशल प्रतिहारों के अधीन था और दक्षिण कौशल सोमवंशी नरेशों के अधीन, परंतु अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि यहाँ किस कौशल का उल्लेख है। आठवां, अभिलेख में उल्लेख है कि यशोवर्मन ने कश्मीर के योद्धाओं का नाश कर डाला था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह कथन बड़ा संदेहपूर्ण है कि यशोवर्मन ने दूरस्थ कश्मीर से कोई युद्ध किया था। नौवां, अभिलेख यशोवर्मन की मिथिला विजय का भी उल्लेख करता है। इससे उसने पाल नरेश गोपाल द्वितीय से जीता होगा। दसवां, अभिलेख यशोवर्मन का मालवा के विरुद्ध मिली सफलता का भी वर्णन करता है। इस समय मालवा पर परमार वंशी सुयुक द्वितीय का राज्य था। संभव है कि यशोवर्मन ने इसी को हराया हो। ग्यारहवां, खजुराहो अभिलेख के कथनानुसार यशोवर्मन कुरु देश के लिए झजाका झंझाबाद के समान था। कुरु देश पर प्रतिहारों का आधिपत्य था। यशोवर्मन की उदयमान शक्ति से प्रतिहार वंश आतंकित हो रहा था और चंदेल वंश के ऊपर उसका अधिकार नाम मात्र को ही रह गया था। यह भी संभव है कि खजुराहो अभिलेख के अनेक कथन केवल प्रशंसा मात्र हो, फिर भी इतना निश्चित है कि यशोवर्मन के समय चंदेल वंश पर्याप्त रूप से शक्तिशाली और प्रतिष्ठित हो गया था। धंग 1950 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक। यह यशोवर्मन और पुष्प देवी का पुत्र था। यह अपने पिता की भांति ही वीर और महत्वाकांक्षी था। अनेक अभिलेखों से प्रकट होता है कि इसने प्रतिहारों के विरुद्ध अपने वंश की स्वतंत्रता घोषित की थी और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। पहला, मऊ अभिलेख से प्रकट होता है कि गड्डदेव के पिता ने कन्नौज के प्रतिहार नरेश को परास्त किया था। दूसरा, नय्यौर अभिलेख से विदित होता है कि धग्गदेव ने काशिका अर्थात वाराणसी में ग्राम दान किया था। वाराणसी प्रदेश पर प्रतिहार वंश का अधिकार था, अतः इस अभिलेख से सिद्ध हो जाता है कि धंग ने प्रतिहारों से वाराणसी छीन लिया था। प्रसिद्ध खजुराहो अभिलेख धंग ने ही उत्कीर्ण कराया था। यह अभिलेख उसके पराक्रम की प्रशंसा करता है। इससे कहा गया है कि कौशल, क्रथ, सिहल और कुंतल पर धग का आधिपत्य था तथा काची, आंध्र, रांडा और अंग राज्यों को रानियां उसका कराओं में पड़ा था। इससे संदेह नहीं कि विवरण पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है। उदाहरणार्थ सिंहल, क्रथ, और कांची के दूरस्थ प्रदेशों पर उसका अधिकार मानना असंभव है। कौशल के दो भाग थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। इसके पिता ने भी इनमें से किसी एक के साथ युद्ध किया था। संभव है कि धग्ग के समय भी वह शत्रुता चलता रहा हो। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं कि इस समय कुंतल में किस वंश का राज्य था, आंध्र चालुक्यों के अधीन था। संभव है कि धग्ग ने चालुक्यों के साथ युद्ध किया हो। अंग पाल राज्य में था और राठा सूर राज्य में। संभव है कि पूर्वी भारत में इन राजाओं से धग्ग का संघर्ष हुआ हो। मुसलमानों से संघर्ष, इस बात के संकेत मिलते हैं कि धग्ग मुसलमानों की बढ़ती शक्ति और उनके कारण भारतवर्ष के लिए उदीमान खतरे के प्रति सचेत था। यही कारण है कि जिस समय सुबुक्तगीन के विरुद्ध शाही वंश के राजा जयपाल ने अन्य हिंदू राजाओं से सहायता मांगी तो कालजर के राजा ने उसे सहायता भेजा था। तिथि क्रम के क्रम से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय कालजर में धग्ग का राज्य था। महोबा अभिलेख कहता है कि धग्ग हब्बीर के समान शक्तिशाली था। ऐसा प्रतीत होता है कि धग्ग ने गंगा जमुना के संगम में डूबकर अपना प्राणांत कर दिया था। संभव है उसका यह पूर्ण कृत था। गड्ड 1002 से 1017 तक। यह धग्ग का पुत्र था। फरिश्ता का कथन है कि महमूद गजनबी के विरुद्ध शाही वंश के राजा आनंद पाल ने भी 1008 में हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया था। इसमें उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर और कालंजर के राजाओं ने भाग लिया था। कालंजर में इस समय गड्ड का राज्य था। इस घटना से स्पष्ट है कि अपने पिता की भांति गड्ड भी मुसलमानों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था। अभाग्यवंश आनंदपाल के नेतृत्व में लड़ने वाली संघ सेना परास्त हो गई। परिणामतः गड्ड के पुत्र एवं उत्तराधिकारी विद्याधर को भी मुस्लिम खतरे का सामना करना पड़ा। विद्याधर 1017 से 1029। अपने पिता गड्ड की मृत्यु के पश्चात 1017 ईस्वी में विद्याधर सिंहासन पर बैठा। अभाग्यवंश इसका अपना कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। इसका इतिहास मुस्लिम लेखों और अन्य भारतीय राजवंशों के अभिलेखों से ज्ञात होता है। अभी तक प्रतिहार वंश मुसलमानों के विरुद्ध सीना ताने खड़ा था। प्रतिहारों के पतन के पश्चात मुसलमानों से लोहा लेने का भार विद्याधर पर पड़ा। राज्यपाल प्रतिहार, इस समय कन्नौज में प्रतिहार नरेश राज्यपाल राज्य कर रहा था। वह भी मुसलमानों की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित था। जिस समय शाही वंश के राजाओं जयपाल और आनंदपाल के महमूद गजनबी के विरुद्ध संघ बनाया था तो राज्यपाल ने उसकी सहायता की थी, परंतु दोनों बार हिंदू संघ पराजित हुए थे। उत्बी के कथनानुसार 1018 में महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। राज्यपाल ने अपने आप को इस आक्रमण को रोकने में अशक्ति समझा और अत्यंत कायरता का परिचय देते हुए बिना लड़े ही भाग गया। महमूद ने कन्नौज पर सुगमता पूर्वक अधिकार कर लिया और वहां भारी लूट मार की। महमूद ने लौट जाने के पश्चात अपनी राजधानी में पुनः वापस आ गया, परंतु इसके कायरतापूर्ण व्यवहार से चंदेल नरेश विद्याधर बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने राज्यपाल को दंडित करने का निश्चय किया। परंतु यहां यह ध्यान रखने की बात है कि जिस समय महमूद गजनबी कन्नौज पर आक्रमण किया था उस समय न तो विद्याधर और न ही किसी अन्य हिंदू नरेश ने राज्यपाल की सहायता की थी। यदि विद्याधर ही अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ कन्नौज की रक्षा के लिए पहुंच जाता तो संभवतः भारतीय इतिहास कुछ दूसरा ही होता। डॉक्टर स्मिथ का मत है कि विद्याधर ने राज्यपाल को दंडित करने के लिए हिंदू नरेशों का एक संघ बनाया था, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा इस कथन पर विश्वास नहीं करते। उनका विश्वास है कि इस कार्य में विद्याधर ने अपने सामंतों के साथ ही मिलकर संघ बनाया था। विद्याधर राज्यपाल की शत्रुता पर तारीख कामिल से प्रकाश पड़ता है। इसका कथन है कि राज्यपाल की कायरता से क्रुद्ध होकर विद्याधर ने अपने दूतों द्वारा उसके पास पत्र भेजे और उसकी भर्त्सना की। इसी बात से दोनों में झगड़ा उठ खड़ा हुआ और दोनों ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। युद्ध में राज्यपाल मारा गया। इस युद्ध और राज्यपाल की मृत्यु के प्रमाण अन्य साक्ष्यों से भी प्राप्त होते हैं। पहला, महोबा अभिलेख उल्लेख करता है कि विद्याधर ने कन्नौज के राजा का नाश कर दिया। दूसरा, धूपकुंड अभिलेख का कथन है कि विद्याधर देव की सेवा करने के लिए उत्सुक अर्जुन कच्छप घात ने राज्यपाल के ऊपर बाणों की वर्षा की जो उसकी गर्दन में घुस गए। परिणाम स्वरूप राज्यपाल मर गया। यह अर्जुन कच्छप घात विद्याधर के अधीन सामंत था। राज्यपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र त्रिलोचन पाल प्रतिहार वंश का राजा हुआ। महमूद का आक्रमण। विद्याधर को दंडित करने के लिए महमूद ने 1019 ईस्वी में पुनः भारत पर आक्रमण किया। उसका पहला युद्ध त्रिलोचन पाल से हुआ। निजामुद्दीन के अनुसार यह युद्ध जून के किनारे हुआ, परंतु उद्बी का कथन है कि यह युद्ध राहब के किनारे हुआ। इस युद्ध में त्रिलोचन पाल पराजित हुआ और वह युद्ध से भाग खड़ा हुआ। उसे उसके साथियों ने मार डाला। डॉक्टर बैजनाथ पुरी का मत है कि त्रिलोचन पाल प्रतिहार नरेश था, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा इस कथन से सहमत नहीं है। इनके मतानुसार त्रिलोचन पाल शाही वंश के आनंद पाल का पुत्र उत्तराधिकारी था। इस प्रकार एक ही समय में दो त्रिलोचन पाल हुए, एक शाही वंश में और दूसरा प्रतिहार वंश में। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार महमूद गजनवी ने जैसे ही पंजाब पार किया वैसे ही उसका युद्ध शाही वंश के त्रिलोचन पाल से रामगंगा के किनारे हुआ। इसके पश्चात महमूद ने प्रतिहार नरेश त्रिलोचन पाल पर आक्रमण किया। इस बार भी अतीव राजनीतिक संकीर्णता का परिचय देते हुए विद्याधर ने त्रिलोचन पाल की कोई सहायता न की। त्रिलोचन पाल में इतनी शक्ति न थी कि वह महमूद का सामना करता, इसलिए वह भाग खड़ा हुआ विद्याधर से युद्ध। अब महमूद ने विद्याधर पर आक्रमण किया। अभाग्यवश इस युद्ध का विवरण भारतीय ग्रंथों में नहीं मिलता, केवल मुसलमान लेखक ही इसका उल्लेख करते हैं। उन विवरणों में परस्पर विरोध और पक्षपात मिलता है। पहला, निजामुद्दीन का कथन है कि महमूद ने जब नंद की बहुसंख्यक सेना को देखा तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि मैंने आक्रमण करके गलती की, परंतु उसने ईश्वर से प्रार्थना की और रात को नंद डर कर भाग गया। दूसरा, गर्दीजी और फरिश्ता का कथन है कि विद्याधर बिना लड़े भाग गया। तीसरा, ताजुल मासीर से प्रकट होता है कि महमूद और विद्याधर की सेनाओं में दिन भर युद्ध होता रहा, परंतु कोई निर्णय नहीं हो सका। रात्रि को युद्ध बंद हो गया। जब प्रातःकाल महमूद युद्ध के लिए आया तो उसने हिंदू सेना को वहां न पाया। मुस्लिम सेना ने हिंदू सेना को ढूंढना प्रारंभ किया। अंत में वह वनों और झाड़ियों में छिपी हुई मिली। मुस्लिम सैनिकों ने बहुसंख्यक हिंदू सैनिकों को मार डाला, परंतु विद्याधर किसी प्रकार बचकर भाग गया। इन तीनों विवरणों में ताजल मासीर का विवरण अधिक पक्षपात रहित प्रतीत होता है। इससे प्रकट होता है कि वास्तव में विद्याधर ने महमूद से युद्ध किया था, इसमें कोई पक्ष भी विजयी न हुआ। दूसरे दिन विद्याधर कूटनीति पूर्वक पीछे हट गया। महमूद विद्याधर की विशाल सेना देखकर प्रारंभ से ही भयभीत था, अतः उसने प्रथम अनिर्णित युद्ध के पश्चात पुनः विद्याधर से युद्ध करने का साहस न किया और गजनी वापस चला गया। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि विद्याधर के पीछे हटते समय भूमिदाह की नीति का अवलंबन लिया था। 1022 ईस्वी में महमूद ने पुनः विद्याधर पर आक्रमण किया, परंतु अनेक दिनों के घेरे के पश्चात भी जब वह कालंजर पर अधिकार कर न सका तो उसने विद्याधर से संधि कर ली। दोनों ने एक दूसरे को उपहार आदि दिए। इन उपहारों को मुसलमान लेखकों ने कर लिखा है। इस प्रकार महमूद विद्याधर को पराजित न कर सका। विजयपाल यह विद्याधर का पुत्र और उत्तराधिकारी था। महोबा अभिलेख से प्रकट होता है कि इसने कलचुरी वंश के राजा गांगेय देव को परास्त किया था।